आप देखिए कि तिलावत सुनते हुए कुछ चीज़ें शायद आपने महसूस की होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले पारे में हमने देखा कि कुछ लोगों के इम्तिहान हुए, मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, भूल गए। फिर शैतान का इम्तिहान हुआ, तकब्बुर की अकड़ दिखाई। फिर बनी इसराइल का इम्तिहान था, गाय के ज़िबा का जो हुक्म दिया गया, फिर मनोसलवा के ज़रिए से आजमाया गया। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात का तذکرہ पारे के आखिर में हुआ। ये जो हुक्म है ना किबले की तब्दीली का, ये असल में उम्मत मुस्लिमा का टेस्ट था कि कौन है जो अल्लाह की बात सुनकर रसूल के नक्शे कदम पे चल पड़ता है। क्योंकि टेस्ट दिए बगैर इमामत का मनसब नहीं मिल सकता। वो लोग जो ये कहें कि हम टेस्ट ना दें लेकिन हमें आगे दर्जों में फाइज कर दिया जाए और हमें कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए, चाहे हम पास हों ना हों, बिल्कुल उनका एक ख्याल ही होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात खोल के रख दी कि किबले की तब्दीली असल में उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान था कि ये लोग क्या रिएक्ट करते हैं। और हर वक्त हम में से हर एक मुख्तलिफ हालात का शिकार होता है। फिर यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो नज़र आई कि यहाँ बैकवर्ड का मानी समझ में आता है, यानी मिम्मा यन कालिब उल आकिब ही, सहाबे कराम कैसे हुए थे, यानी जिस तरह थे बिल्कुल उससे बैकवर्ड हो गए। अल्लाह ताला ने यहाँ वो लोग जो रसूल की इत्तबा नहीं करते उनको बैकवर्ड कहा है। आज के दौर में हमारा क्या तसव्वुर है, सुन्नतों को मानने वालों को लोग बैकवर्ड कहते हैं कि ये तो जी पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन लोग हैं। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में हर वो बंदा जो बात को सुनकर मान जाता है और अपनी मर्ज़ी को और अपने तरीके को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह ताला फिर उसको अपने कामों के लिए चुन लेता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बताई। फिर एक और चीज़ जिस पे निगाह पड़ी वो क्या थी कि ये बात क्यों कही गई कि यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाहुम। सवाल पैदा होता है कि यहाँ ये बात तो कही गई कि वो ऐसे उसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, तो बेटों की बजाय यहाँ माँ बाप का नाम क्यों नहीं आया? ये भी तो आ सकती थी ना बात कि वो इस तरह से उसको पहचानते हैं जैसे अपने माँ बाप को पहचानते हैं। इस पे भी मुफस्सरीन ने बात की है कि इंसान अपनी औलाद को जितना बेहतर जानता है उतना अपने माँ बाप को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि औलाद उसके हाथों में पलती है, बचपन से लेके उस बच्चे को देखा होता है, और माँ तो उसके जिस्मानी नकायस से भी वाकिफ होती है। अगर किसी के जिस्म पे कोई किसी किस्म की कमी है तो माँ को सबसे ज़्यादा पता होता है, जबकि माँ बाप के जिस्म इंसान से ओझल होते हैं, दूर होते हैं। तो इससे ये बात भी समझ में आती है कि अगर कोई माँ अपने बच्चों से कहती है ना कि मैं तुम्हें खूब जानती हूँ, तो ये बात ज़्यादा मानने के काबिल होगी इस बात की निस्बत कि कोई बच्चा कहे अपने माँ बाप को जी कि मैं आपको खूब जान गया। बच्चे तो बचपन से कहते हैं हमें आपका खूब पता चल गया, लेकिन बच्चों की सोच आप देखिए कि हर वक्त बदलती है। बचपन में माँ बाप को वो कुछ और क्रेडिट दे रहे होते हैं, जो ही वो बड़े होते हैं माँ बाप के क्रेडिट्स में कमी आती जाती है उनकी निगाहों में। तो इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताला लोगों की नेचर को कितना ज़्यादा जानते हैं और उनके सामने हर चीज़ को रखा जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि ये सारे अहकाम हुए, अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर नबी सल्लम की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। आप चाहते थे कि किबला दूसरी तरफ हो, और आपको ये भी पता था कि यहूद को भी ये बात पता है कि खाना काबा ही आखिरी उम्मत का किबला होगा। तो ये बहुत सारे असबाब जब जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने ये बात रखी। फिर एक और चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है वो क्या है, वमा अंत बिताबिन किबलतहुम, आयत नंबर 145 में देखिए, और ना तू इनके किबले को मानेगा। ये टुकड़ा यानी आयत का ये छोटा सा टुकड़ा जो है, इसमें असल में एक बहुत बड़ी हकीकत का ऐलान किया गया है। और वो क्या कि अब क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत का किबला बैतुल्ला ही रहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप नहीं कभी भी उनके किबले की पैरवी करेंगे। और इससे उस वक़्त के यहूद और नसारा के उन ख्यालात का रद्द भी था कि जो मुसलमानों को ताने देने शुरू हो गए कि इनका तो कोई किबला ही नहीं, पहले बैतुल्ला था, फिर बैतुल मक़दस हो गया, फिर बैतुल्ला हो गया, तो क्या बड़ी बात है कुछ दिन के बाद अब फिर ये बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको बता दें कि वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, कि अब आप कभी भी इनके किबले को नहीं फॉलो करेंगे और आप लोगों को इनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और हकीकत यह है कि किबला जो है वो जवाहर इबादत में से है, यानी इबादत की ज़ाहरी कैफियात में से है, लेकिन इबादत की रूह के साथ इसका उतना गहरा ताल्लुक नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि कौमें जब जाहिर परस्त हो जाती हैं तो दीन के जाहिरी कामों को इतना ज़्यादा महसूस करती हैं कि बाज़ दफ़ा कोई किसी की मस्जिद में आके अगर ऊंची आवाज़ से आमीन कह दे तो लोग उसको मारने के लिए टूट पड़ते हैं। अगर कोई कहीं जाके रफुल यदैन कर दे तो वहाँ ऐसे लगता है कि कोई शायद बहुत ही बड़ा सानेहा हो गया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ असल में ये सोच भी बदली है कि असल बात है कि अपने अमाल को देखो, जो अल्लाह ताला इबादत के ज़रिए तुम्हें बनाना चाहता है वो बन के देखो, अपना जायज़ा लो, क्या तुम्हारे दिलों के अंदर इतनी आजजी है कि तुम्हें कोई हुक्म मिले और तुम फौरन मान जाओ। सहाबे कराम ने कितने खूबसूरत तरीके से नमाज की हालत में अपने रुख बदल लिए। और इसी तरह यहाँ किबले की तब्दीली से एक और बहुत ही प्यारी बात है और उसका ताल्लुक पूरे पारे के साथ है, और वो क्या है कि अभी तक सूरत बकरा का जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसमें उम्मते मुस्लिमा को यहूद के तनाजर में वो चीज़ें दिखाई गईं जो उन्होंने की और अब हमें नहीं करनी। लेकिन अब इससे आगे तक सूरत बकरा के आखिर तक जो हिस्सा है वो क्या है कि अब उम्मते मुस्लिमा को करना क्या है। और इसी में सबसे पहली चीज़ किबले की तब्दीली का तذکرہ क्यों किया गया, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि तुम आम लोग नहीं हो, तुम्हारी एक पहचान है, तुम्हारी एक निशानी है। आज के दौर में इसको समझना आसान है, मसलन लोग कहते हैं हमारा स्लोगन है, कोई कहता है हमारा ट्रेडमार्क है, कोई कहता है कि ये हमारा लोगो है। किसी का कोई भी ऐसा चीज़ जो उसकी रजिस्टर्ड हो लेना या उसको यूज़ करना जुर्म है। बिल्कुल इसी तरह उम्मते मुस्लिमा को यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखा दिया गया कि यहूद के साथ रह तो सकते हो लेकिन तुम्हारा अपना किबला होगा, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के अपने तरीके होंगे। ये सिर्फ में इस बात की निशानी थी कि अब तुम उनके किबले को नहीं फॉलो कर रहे तो अब तुम ज़िंदगी गुजारने के किबले भी उन जैसे नहीं रखोगे। अल्लाह के नबी जब मदीना आए हिजरत करके तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हस्बे आदत आपकी मांग जो थी वो साइड से निकाल दी, जैसे आज भी हमारे अक्सर मर्द हजरात बाईं तरफ मांग निकालते हैं। तो मक्का में आप ऐसे निकालते थे, हज़रत आयशा ने आपकी इस तरह मांग निकाल दी। तो आपने कहा कि आयशा इधर की बजाय मिडल में निकाल दो, यानी दरमियान में मेरी मांग निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आज तक तो आपने कभी मना नहीं किया, आज क्या हुआ? क्या बस इसलिए कि मैंने यहाँ देखा कि यहूद जो है वो बाईं तरफ मांग निकालते हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरा अमल उनसे मिले, हालांकि कोई हराम नहीं, सारा सर अल्लाह ताला का दिया हुआ है, दायां भी बायां भी मिडल में। लेकिन जब सोच बदलती है, जब दिल बदलता है और इंसान अपने आप को जाहिर करना चाहता है तो वो पसंद नहीं करता कि उसके साथ उसकी कोई चीज़ मिले जिसके साथ उसका नज़रियाती इख्तलाफ हो। तो लिहाजा आपने कहा कि तुम मेरा दरमियान में निकाल दो और उसके बाद फिर वैसे ही निकालने लगी। ये एक छोटी सी मिसाल है लेकिन इससे बात बहुत बड़ी समझ आती है कि इंसान जब भी किसी के मुकाबले में आता है ना तो पहले उसको उससे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना होता है, अलग करना होता है। अब देखिए कि सारा दिन आप किसी के साथ लड़ें और रात को उसी के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएं, कल अगले दिन वो कैसे आपके मुकाबले में आपको रखेगा, वो तो आपको फौरन हरा देगा। जब हम गैर अल्लाह के नाम पे लड़ने की बात करते हैं या अपने नज़रियात को जाहिर करते हैं तो अगर रातों का हम उन्हीं की फिल्में देखते हैं और उन्हीं के तौर तरीके हमारी शादियों में होते हैं और हमारे मरने में होते हैं तो दुश्मन कभी भी हमसे नहीं डरेगा। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि मुसलमानों को एक अपना मुकाम पता चले। और ये भी बात यहाँ पता चल गई कि उम्मत मुस्लिमा एक कायद उम्मत है, ये लीडर है, और हमेशा छोटे लोग बड़ों को फॉलो करते हैं, लीडर्स को, लीडर छोटे लोगों को फॉलो नहीं करते। बस दफ़ा ऐसी चीज़ें भी देखी गईं, मसलन कुरैश को बहुत मान था इस बात का कि हम लीडर्स हैं और हम बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हज के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बिदात शामिल कर दी थी कि एक ख़ास जगह पे जाके रुक जाते थे और अरफात में नहीं जाते थे, कहते थे हम क्यों हर एक के साथ जाएं, और इसको खुमस कहते थे। अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि नहीं, जो फीज़ मिन हैसु फाज़ अन्नास, आगे आयत आएगी कि जहाँ से लोग फिरते हैं तुम भी वहीं फिरो। तो सारी बात का अभी तक खुलासा यही है कि किबला असल में एक वहदत था, एक उम्मत को तरीक़ाकार बताया गया। अब आगे कुछ अहकाम हैं, अगली आयात में हम देखेंगे कि कुछ अहकाम हैं किबले की रोशनी में, किबले के नाते से, और वो क्या हैं वो हम देखेंगे। आयत नंबर 148, वली कुल्ले वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात अइनमा तकूनू याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और हर एक के वास्ते एक जानिब है, यानी किबला, कि वो मुंह करता है इसकी तरफ। पस तुम सबकत करो नेकियों में, जहां कहीं भी तुम हो गए अल्लाह तुमको इकट्ठा कर देगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। यहाँ पे उसी मज़मून को आगे बढ़ाया गया, कहा गया कि ये लोग इस पे एतराज़ क्यों करते हैं। हर एक यहूदी है, नसरानी है या मुसलमान है, उसने अपने लिए एक ना एक सिमत तो रखी हुई है। वज्ह का लफ्ज़ जो है ना, वैसे वज्ह चेहरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ वज्ह की सूरत में आया है। मतलब क्या है, यहाँ असल में अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि दूसरी हिकमत, किबले की तब्दीली के हुक्म में दूसरी हिकमत क्या है, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का कोई ना कोई किबला रखा हुआ है, जिसकी तरफ मुंह करके वो इबादत करता है। दीने इस्लाम चूंकि एक मुस्तकिल दीन है, इसका किबला भी एक ख़ास अपना किबला होना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि किबले के झगड़ों में मत पड़ो, वो मशरिक है कि वो मग़रिब है। बस वलीकुल ने विछतुन, बस हर एक का एक तरीक़ाकार है, एक मनहज है, एक उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करते हैं, ठीक है उनको करने दो, तुम बैतुल्लाह की तरफ कर रहे हो, इसमें झगड़ने की क्या बात है। असल में यहाँ मामले को समेटा जा रहा है, झगड़ा छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि असल बात जो है वो इसके बाद की है। और वो क्या है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। असल ये मसला है, क्योंकि जब इंसान छोटी छोटी फिक्ही बहसों में पड़ जाता है और उलझनों में पड़ जाता है, तो सारी तवज्जो दीन के जाहिर पे रहती है। जाहिरी इबादत तो बहुत ज़्यादा इंचों के साथ नाप नाप के इंसान करता है, लेकिन उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। आज के हालात में मुसलमानों ने नमाज के साथ जो मामला किया, वो इसकी मुंह बोलती हुई तस्वीर है, कि नमाज के मामले में शायद 10 से भी ज़्यादा तरीक़ेकार लोगों ने अखज़ किए होंगे, और यकीनन उसमें से कोई एक ज़्यादा ठीक होगा, दूसरा कम ठीक होगा, कोई गलत भी होगा, लेकिन मकसद क्या है कि तुम अपनी ज़िंदगियों को इस काम में ज़ाया ना करो कि तुम दूसरों पे तनकीद करते रहो। बल्कि वलिकुल्लिन विच्छतुन, हर एक की एक विच है, उसकी ज़िंदगी का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसकी तरफ उसकी तवज्जो जाती है। अब देखिए कि इसको किबले के तनाजुर से ना देखें, अगर अलग करके देखें, तो क्या हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रायोरिटी है कि नहीं है। आप ऐसे समझें, विच क्या है, जैसे सेंट्रल पॉइंट, मसलन औरत, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, घर। बाहर जाती है फिर वापस आती है घर, कहीं इधर गई उधर गई इधर, फिर वापस आई। बच्चे वाली माँ को देख लें, उसका विज कौन है, उसका बच्चा है। जिधर भी होगी ना, थोड़ी देर बाद उसका ध्यान भी उधर जाता है, उसकी तवज्जो भी उसी तरफ होती है, उसको ख्याल भी उधर ही आता है। इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला बंदे को यहाँ बता रहा है कि हर बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट रखा हुआ है। किसी ने जॉब रखी हुई है, पूरी ज़िंदगी जॉब पे घूम रही है, कहीं मूव होना है, कहीं जाना है, छुट्टी है नहीं है, जॉब से है। किसी का जो स्कूल है, उसके स्कूल के साथ उसकी ज़िंदगी चलती है। लिहाजा दीनी या दुनियावी मामलात में ये बात कोई बड़ी मुख्तलिफ बात नहीं है कि कौन किधर मुँह कर रहा है। हर एक ने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें रखी हैं, असल करने का काम क्या है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में जल्दी करो। यहाँ देखिए इस तबका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सीन बा काफ कहते हैं सबक को, सबका वो आगे बढ़ा, साबिक कहते हैं आगे बढ़ने वाले को, इसी से फिर लफ्ज़ सबाक है। काफ ये जो दौड़ने वाला शख्स होता है ना, जैसे रेस का मुकाबला होता है, तो सबाक आगे निकलने वाले को, फर्स्ट आने वाले को कहा जाता है। कि देखो तुम फजूल बातें छोड़ो और अपने आप को अल्लाह के कामों में लगा लो। और यहाँ खैरात कहा गया, जो खैरतुन की जमा है, यानी कोई एक रटी रटाई नेकी ना करो, कोई रस्मी नेकी ना करो, बल्कि नेकी की मुख्तलिफ किस्मों को ढूंढो। अपने आप को एक ही चीज़ के साथ ना जोड़ दो। अगर तुम्हें तबलीग पसंद है तो तुम सारा दिन तबलीग पे जोड़ लो, अगर तुम्हें जिहाद पसंद है तो तुम सारा दिन जिहाद का नाम बना लो, जिहाद को पूरे दिन का नाम दे दो। तुम्हें अगर तालीम पसंद है तो कहो कि सिर्फ तालीम हासिल करना ही नेकी है, बल्कि कसीरुल शक्ल की, मुख्तलिफ तरीकों की नेकियां करो। हकूकुल इबाद को भी देखो, हकूक अल्लाह को भी देखो, अपनी ज़ात को भी देखो, इबादात को भी देखो, मामलात को भी देखो, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग एक तरफ झुकने लगते हैं। इस सोच से इंसान को रोका गया कि तुम आओ, दूसरों की छोड़ो, अपनी बात करो, और बहसों में पड़ने के साथ बजाय भाग भाग के काम करो। और यही वो चीज़ है जो इंसान को दूसरों से बेनियाज करती है। वरना तो आप देखिए कि एक इंसान अगर दुनिया वालों को देखता रहे तो हर वक्त लड़ता रहे। जिस बंदे को अपनी आखिरत याद रहेगी ना, वो कभी भी दूसरे की लड़ाई में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा, वो दूसरों के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेगा, कौन किधर है, कौन रूठा हुआ है, कौन नाराज़ है, किसकी बेटी घर में आई हुई है, किसकी शौहर से झगड़ा है, उसको तो गम क्या है कि मेरे पास वक्त बहुत कीमती है। इसीलिए साथ ही अगले जुमले में आखिरत की याद दिला दी, अइनमा तकूनू यातीबिकुमुल्लाहु जमीया, जहाँ कहीं भी तुम हो गए अल्लाह ताला तुम सबको इकट्ठा कर लेगा। आज चंद दिन की दुनिया है, क्या तुम इसको लोगों पर एतराज़ करते हुए, तनकीद करते हुए गुजार दोगे? आज तुम जो भी कर रहे हो, कल अल्लाह ताला ने सबको मैदाने महशर में जमा करना है, और फिर उस वक़्त उससे हिसाब लेगा। और इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे खूब कुदरत रखने वाला है। उसको खूब पता है बंदे के मामलात को, वो देखता है कि वो काम कैसे करता है, बंदे की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों के साथ लगी हुई है। इससे क्या पता चलता है कि एक बंदा नेकी में जल्दी करे, ख़ास तौर पे कुछ नेकियां ऐसी हैं कि जिसमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, मसलन नमाज का वक्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का कोई अमल जो अल्लाह ताला को पसंद है वो क्या है? नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना। अब यहाँ एक बात यह है कि अव्वल वक्त में पढ़ना, यहाँ एक सवाल मुफस्सरीन ने उठाया कि क्या हर नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना बेहतर है, या कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लम ने उनके आखिरी वक्त में पढ़ना पसंद किया? मसलन जोहर का वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अनस से, कि नबी सल्लम को ईशा की नमाज मुअख्खर करके पढ़ना पसंद था। और एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्क़त का डर ना होता तो मैं इसको बिल्कुल रात के आखिरी हिस्से में रख देता। इसी तरह जोहर की नमाज के बारे में आता है कि एक ऐसा मौका था, सफ़र में थे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हों ने नबी सल्लम से इजाज़त तलब की कि क्या मैं जोहर की अज़ान दूँ? तो आपने फरमाया कि नहीं, जब वक्त ज़रा ठंडा हो जाए और गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की आग से है, यानी आप गर्मी के ज़माने में जोहर की नमाज़ को थोड़ा डिले करके पढ़ते थे। अब मुफस्सरीन कहते हैं कि क्या किया जाए, एक तरफ तो फस्तबिकुल खैरात कहा गया, दूसरी तरफ दो नमाजें ऐसी हैं कि जिनका इब्तदाई वक्त तो शुरू हो जाता है, आगे जाके आपको कहीं दोनों वक्त लिखवा भी दूंगी कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लम को मेराज के बाद दोनों वक्त बताए थे, तो फिर क्या किया जाए? तो उसका जवाब क्या है कि जिस काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त पसंद किया उस वक़्त करना ही असल में उस पर सबकत लाना है। मुराद क्या है कि इंसान अपने आप को सुस्ती की वजह से पीछे ना रख दे, दूसरा उसके हिस्से की नेकी कर ले। आप देखिए कि हर नेकी का एक वक्त होता है। ये ऐसी है कि जैसे कोई किसी के हाथ में चीज़ है ना, वो यूं फेंकता है, कहता है जिसको जाके लेनी है ले लो। एक तो सूरत यह है कि जितने लोग हैं उतनी ही चीज़ें थी, तो कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। आप जल्दी से जाएंगे, आप अपने हिस्से की उठा लेंगे, दूसरा जाएगा दूसरा पकड़ेगा, आपको इत्मीनान है कि मैं देर से भी जाऊंगा मेरी चीज़ वहीं पड़ी है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा ऐसी नेकियां बटी भी नहीं मिलती, नेकियां थोड़ी होती हैं, मौके थोड़े होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। इस सूरत में वो नेकी उसी के हाथ में आएगी जिसने भाग दौड़ की, जो भागा, जिसने अपनी ज़िंदगी को कीमती जाना कि मेरे पास वक्त कम है, मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया क्यों करूं, मैं दूसरे का मुंह क्या देखूं। कुछ लोग होते हैं वो देखते रहते हैं देखते रहते हैं, कोई ना उठे फिर वो कहते हैं चले हम उठ जाते हैं, अब क्या करें, शर्म भी आ रही है, कोई दूसरा नहीं हाँ कर रहा तो मैं कर दूं। और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं, सबसे पहले मेरा हाथ उठना चाहिए। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पर जबकि ये बात सुनी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में बेहिसाब के दाखिल होंगे, 70,000 लोगों की बात आपने की कि वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे, तो हज़रत उकाशा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ करें कि मैं उनमें से हूँ। तो आपने दुआ की, आपने कहा कि उकाशा तुम उसी में से हो, यानी आपने खुशखबरी दी। जब खुशखबरी सुनी तो एक और सहाबी भी उठ के खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी सल्लम मेरे लिए भी यही दुआ कर दें। तो आपने क्या कहा? कि वो का शाबाजी ले गए और वो नेकी उनके हाथ से छिन गई। हम सब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, फ़र्ज़ इबादात से लेके मामलात को देखें, ताल्लुकात को देखें, जिम्मेदारियों को देखें, कमिटमेंट्स को देखें। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हर उस चीज़ को जो हमें कही जाती है उसको फौरन करें, भाग दौड़ के करें, पीछे ना रहें। जिंदगी के हर मामले में ये आपको रवैया दिखेगा। आप सिर्फ अपने ऊपर ले के इस चीज़ को देखें कि जो नेकी के एक काम में आगे होगा ना, अल्लाह ताला की तौफीक से वो दूसरे काम में भी आगे होगा। आपको पता है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का हमेशा मुकाबला हो रहा होता था, और ये मुकाबला नापसंदीदा नहीं है। हजरत उमर कहते हैं कि मैं हमेशा इस उम्मीद पे होता था कि मैं अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हत्ता कि जब मैं तबूक के मौके पे अपने घर का आधा सामान लेके आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज तो मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन जब मैं गया तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक तो अपने घर का सारा सामान लेके आ गए। मैंने कहा अबू बकर मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए इसकी वजह से ना तकाबुल था ना वो नबी सल्लम को कुछ कहते होंगे जी कि आप तो अबू बकर को बहुत ही चाहते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, ये हर बंदे की चाहत है जो उसको अल्लाह के रास्ते में लेके जाती है। फिर इसी तरह एक मौके पे अल्लाह के नबी से खुशखबरी सुनी किसी सहाबी के बारे में कि किसी ने देखना हो कि कोई जन्नती है तो अभी जो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती है। अब देखा तो एक शख्स गुजरे, पानी टपक रहा है, वुजू किया हुआ है, गुजर गए। अब सहाबा को तजस्सुस लग गया कि ये शख्स है, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात कही है। एक शख्स उठे और उनके घर चले गए, कहा कि मैं आज की रात आपका मेहमान रहना चाहता हूँ, मैंने किसी वजह से कसम खा ली है कि मैं घर में नहीं जाऊँगा, तो लिहाजा मुझे अपना मेहमान रख ले। कहा रही है, बैठे रहे उनके साथ। जब जाने लगे तो कहने लगे कि सच्ची बताऊँ मैं तो आपकी कोई छुपी हुई नेकियाँ देखने आया था कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो मुझे तो वो सारे काम नज़र आए जो हमारे भी हैं, हत्ता कि उसमें तहज्जुद का भी जिक्र था जो हमारे यहाँ भी आज भी कुछ खास ही लोगों की काम होगा। तो उन्होंने उस वक्त अपनी एक नेकी बताई कि मैं कभी किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखता, मैं हमेशा मुसलमानों के लिए अच्छी सोच रखता हूँ। तो इन्होंने कहा कि बस फिर यही आपकी नेकी होगी। तो बात क्या है कि मुकाबला नहीं करना, लेकिन मुसारियत करनी है, सूरत से भागिए, जल्दी कीजिए। बस दफ़ा हम अपनी ज़ात को दूसरों के लिए बोझ भी बना देते हैं। मसलन अगर आप देखिए, मैं सिर्फ बात अपने यानी इस ख्याल से कि हमारी सोच जाए कि हम अपनी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं देते। बिलफर्ज आप सब यहाँ आ रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, आप सब यहाँ से छुट्टी होती है निकलना चाहते हैं, आप कहें कि आज ही पढ़ा के फस्तबिकुल खैरात, तो बस अब सारे जल्दी से भागें गेट की तरफ। हाँ, अब इस वक्त कि जब आप दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बने, या सुबह आ रहे हैं तो आप देखें कि 6-7 लोग आपसे पहले आगे खड़े थे और आप 7वें नंबर पे थे दरवाजे में, रश साहब कहते नहीं पीछे हो जाओ, मुझे फस्तबिकुल खैरात करना है और अंदर इल्म की महफिल सजेगी तो मुझे वहां जाना है। नहीं, अगर ये शौक था तो आप पहले ही जल्दी आते। आपने कहा कि तुम में से जो देर से आए फिर वो लोगों की गर्दनें फलांग फलांग के अगली सफ में ना बैठे। जिसको शौक होता है वो वक्त से पहले आता है। फिर इसी तरह देखिए कि यहाँ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ना, मैनेजमेंट के कुछ असूल होते हैं। अगर आपको कुछ कोई लाइबिलिटीज है तो क्या ये बात एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आप दूसरों को बार बार कहलवाएं? कोई जिम्मेदारी है, कोई बात आपको एक दफा कह दी, आपको पता है कोई हमारा नाम कितनी दफा सोचता होगा, कहाँ लिखता होगा, कितनी जगह याद रखता होगा, और फिर कहीं हम उस काम को करेंगे। हर बंदे को अल्लाह ताला ने फहम दिया है, तकवा दिया है, और तकवा होता ही है कि बंदे को अपनी गलतियां दिखें। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो बस हर चीज में अपनी जान पे बोझ ही रखते हैं और दूसरों को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं फस्तबिकुल खैरात, भागो खैर की तरफ आओ। फिर आप देखिए कि खैर का लफ्ज जो है ना, ये माल के लिए भी आता है। यहाँ एक छोटा सा तकाबुल देख लीजिए कि अल खैरात का लफ्ज खैर से है और खैर का लफ्ज अरबी में दो लफ्जों के लिए है। एक तो वही मानी है जो अभी तक हमने देख लिया, दूसरा मानी है खैर का माल। कहाँ लिखा है? सूरत अल आदियात में, इन्नल इंसान अल खुब्बिल खैरी लशदीद, के बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा ही शदीद है। अब आप सोचिए कि एक ही लफ्ज है, पहले मानों में नेकियों की तरफ भागने वाले कितने, और कोई कहे कि देखें यहां तो ये लिखा है कि माल की तरफ भागो। क्योंकि अल्लाह ने लिखा है फस्तबिकुल खैरात, तो फ़र्क हो जाएगा ना, वहाँ खैर है। खैरात और खैर में फ़र्क है। अमली ज़िंदगी में देखें तो भाग दौड़ सिर्फ माली की तरफ लगी हुई है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ कुछ मिल जाता है ना। हमें वो भी काम करने पड़ेंगे जो हम शायद अपने ज़ाती काम भी वो ना कर सकें और हमें पसंद ना आए, लेकिन हम वो करने को उस वक्त तैयार होते हैं जब उसके बाद हमें कोई माली तौर पे फ़ायदा हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फस्तबिकुल खैरात अयनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। यहाँ वो रिवायत भी कोट कर सकते हैं आप जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लम ने फरमाया कि अली, तीन कामों में देर ना करना। एक, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में जबकि उसका वक्त हो जाए। दूसरा, वो शख्स औरत या मर्द जिसका साथी ना रहे, यानी बेवा हो जाए औरत या तलाक हो गई किसी भी सूरत में, तो उसके निकाह सानी में यानी दूसरे निकाह में जल्दी करो, क्योंकि ऐसे इंसान को जो एक दफ़ा शादीशुदा ज़िंदगी गुजार ले उसको शैतान ज़्यादा बहकाता है। और तीसरा, आपने फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए तो उसके कफन दफन में जल्दी करो, क्योंकि अगर वो नेक है तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उसको उसकी जगह से रोको, और अगर वो बद है तो फिर ऐसा ना हो कि उसके हिस्से का अजाब तुम्हारे पास आ जाए। इसी तरह यही बात सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 24 में भी आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मरई वक़ल्बिही। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाया करो जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हों, और जान लो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करते हैं आदमी और उसके दिल के दरमियान। क्योंकि जब एक दफ़ा हम नहीं करते नेकी को तो रुक जाते हैं, देखिए भूल जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जल्दी ना करने का कि शैतान इंसान को भुला देता है। फिर दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी का क्या पता है, मौत आ गई तो वो नेकी हमारे हाथों से चली जाएगी।